जय जय श्री राधे श्याम। सबको दिल से बधाई हो कि आप गिरिराज के धाम में आए हैं। गिरिराज गोवर्धन की, श्री गिरिराज गोवर्धन की, श्री कृष्ण भगवान की, श्री गिरिधारी जी की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम लोग श्री गिरिराज के धाम में यहाँ बैठे हैं और गिरिराज के जहां पर बैठे हम लोग उसको यहाँ पर भाषा में तलहटी बोलते हैं। तलहटी मतलब द बेस, जहां पर एकदम उनके सानिध्य में, उसको गिरिराज की तलहटी कहते हैं। तब जब कथा होगी तो सबको विनती है कि जपा बंद करें, और जपा करने के लिए आपको आज 8 घंटे मिलते हैं। 64 राउंड तो आराम से कर सकते हैं आप लोग। इसलिए कथा के समय पे आप जरा जप को विश्राम दीजिए और कान के दरवाजे खोल दीजिए, साथ साथ हृदय के भी खोल दीजिए। तो सबसे निकट गिरिराज की हम यहीं आ सकते हैं। दिस इज द क्लोजेस्ट यू कैन गेट टू श्री गिरि गोवर्धन। श्री वृंदावन धाम में भगवान को नंदगांव बरसाना गोवर्धन विराजमान है और उसमें से गोवर्धन जो क्षेत्र है वो भगवान को बहुत प्रिय है। और ये जगह जो है इसका नाम है गोविंद कुंड। और गोविंद कुंड शास्त्र में लिखा है, पुराणों में लिखा है कि गोविंद कुंड में जो पहुंचता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं और राधा कृष्ण के प्रति उनके हृदय में प्रीति उत्पन्न होती है। ये शक्ति इस गोविंद कुंड में है। तो संक्षेप में बताया जाए, क्योंकि समय हमारे पास थोड़ा सा कम है, विस्तार में कथा नहीं कर सकते हैं। इसी जगह पर आप सब जानते हैं कथा श्री गोवर्धन की, जब भगवान ने कार्तिक के पहले दिन में नरकासुर को मारा, उसके पश्चात दूसरे दिन में भैया दूज हुई, उसके भाई बहन उस दिन जमुना जी में स्नान करते हैं, और उसके तीसरे दिन फिर गोवर्धन पूजा हुई। हाँ, बलि प्रतिपदा के दिन होती ना, तो चतुर्दशी के दिन नरकासुर का वध और अमावस्या पे बलि प्रतिपदा के दिन गोवर्धन पूजा होती है ना। तो गोवर्धन पूजा के दिन उसके बाद में जब भैया दूज के बाद तीसरे दिन भगवान ने गोवर्धन पूजा के बाद जो काम किया उसके वजह से इंद्र को क्रोध आया और उसके बाद 7 दिन वर्षा हुई। और 7 दिन वर्षा होने के बाद में एकादशी के दिन इंद्र जो है वो पश्चाताप करने लगे और फिर वो बृहस्पति के पास गए और बृहस्पति जी ने उनको आदेश दिया कि अभी आपकी खैर नहीं है, कुछ भी आपने ऐसा अपराध किया है इसका कोई उपाय नहीं। लेकिन वो दंडवत करते हैं, कहते उपाय बताइए। अब एक ही उपाय है, जो भगवान की परम भक्त हैं सुरभि गाय, उसके पास आप जाएंगे और शरण जाएंगे उसको, तो सुरभि गाय आपको भगवान के पास लेके आपको माफी दिला सकती है। तो वो कथा थोड़ा विस्तार से वहां करेंगे। तो इस जगह पर इंद्र को माफी मिलने के बाद में वो सभी देवताओं को लेकर यहां पर आए गोवर्धन के बीच में, और बड़ा लंबा विस्तार है उसमें, वायु उसमें, वरुण उसमें, चंद्र सूर्य और अप्सराएं और वैदिक वेद जो है, स्वयं व्यक्ति बन के अप्सराएं, स्वयं वेद और कामधुनि गायें, सारे वृक्ष यहाँ के व्यक्ति रूप में आए, भगवान का शंख आया और जितने भी भगवान के पार्षद हैं, जितने भी भगवान के भक्त हैं, वो सब लोग व्यक्ति रूप में यहाँ पर आए। और वरुण ने अपना सिंहासन जो है रत्नों से भरा हुआ वो यहाँ विराजमान किया। वायु ने अपने धाम से, मतलब ये सब देवताओं के अपने अपने लोक हैं और वहां पर उनके पास जो जो बेस्ट वस्तुएं हैं वो सब लेकर यहाँ पर आए। हाँ, कोई छत्र लेकर आया, कोई आसन लेकर आया, सिंहासन रत्नों से भरा हुआ, गरुड़ जी अपना पंख फैलाकर ऐसे होता ना डोम कौन कैनोपी टाइप खड़े हो गए, और ऐरावत ने अपने 5 सुंड से आकाश गंगा से जल लाया, सुरभि माता ने अपना दूध दिया। इस प्रकार से बेस्ट जो ऐश्वर्य संपन्न व्यवस्था हो सकती है, बड़ा विस्तार में पढ़ना है उसका, वो यहां पर की गई। और फिर इंद्र इंद्र के जो ऐरावत है उसने अपने पांच सुंड से भगवान के ऊपर अभिषेक किया, सुरभि ने अपने दूध से अभिषेक किया, वायु ने चमर ढुलाया, हाँ, और पांचजन्य शंख ने अनेक शंख के रूप में वो विस्तारित हो गए और शंख बजाकर सब आसमंत को उन्होंने गुंजगुंजा गुंज उसकी फैल गई सब जगह पे। सभी वैदिक ऋचाएं, सभी जितने भी वाद्य हैं देवताओं के, सब यहां प्रकट हो गए। उन्होंने अपने दिव्य संगीत को यहां पर बजाया और बड़े ही ऐश्वर्य संपन्न रीति से इंद्र के नेतृत्व में, ब्रह्मा जी के नेतृत्व में यहां पर भगवान का अभिषेक किया गया। ऐसे कहते हैं कि ब्रह्मा जी के चार मुख जो है वो चार दिशा में थे, लेकिन जब भगवान का अभिषेक हो रहा था वो चारों मुख एक दिशा में ऐसे भगवान के अभिषेक को दर्शन कर रहे थे। इस तरह से बहुत सुंदर दिव्य रूप से और बड़े प्रेम से उनका अभिषेक किया गया। और वो जो उनका अभिषेक दूध और पानी का, आकाश गंगा का मिला हुआ है, वो चरणों से निकलकर इस कुंड में जमा हो गया। तो ये गोविंद कुंड जो है भगवान का चरणामृत है। उसी जगह पर फिर इंद्र ने भगवान को ब्रज का राजा श्री गोविंद के नाम से घोषित किया। भगवान का जो गोविंद नाम है वो तो चिरंतन नाम है, शाश्वत नाम है, लेकिन फिर भी इस लीला में इंद्र ने अपने तरफ से भगवान को श्री गोविंद के रूप में घोषित कर दिया। हाँ, तो ये जगह भगवान की चरणामृत की जगह है और इसमें आपको आचमन करना है। आचमन का मतलब होता है कि स्नान के बराबर ही होता है वो, लेकिन वो संक्षिप्त स्नान है। हाँ, क्योंकि स्नान अगर आप करेंगे इसमें अभी तो आप जल में ही फ्रीज हो जाओगे। ऐसी विशेष व्यवस्था है इस समय यहाँ पर। तो आचमन का मतलब ऐसा होता है कि पहले हम कुंड के पास जाते हैं और बड़े प्रेम से भक्ति से दंडवत प्रणाम करते हैं, और दंडवत प्रणाम करने के पास में जल में हाथ डालकर उसके तीन बूंदे अपने सर पर डालते हैं। उसके बाद में एक बार पानी हाथ में लेते हैं, ओम श्री केशवाय नमः, फिर उसको पीते हैं। दूसरी बार लेते हैं ओम श्री नारायणाय नमः, उसको पीते हैं। तीसरी बार लेते हैं ओम श्री माधवाय नमः, उसको पीते हैं। चौथी बार लेते हैं ओम श्री गोविंदाय नमः, पीते हैं। ये जब आप करते हो, तीन बार आपने सर पे डाल दिया और ऐसे आचमन कर लिया, इसका मतलब आपका यहाँ पर स्नान हो गया। तो इस भावना से आपको करना है। और जल में अभी हो सके तो अपना पैर जल में मत डालना, ठंडा भी वैसे है, और आचमन करके आपको आना है। अभी इसके आगे हमारी जो कथा है वो सुरभि कुंड में होगी, उसके बीच में कुछ स्थान है, आपको संक्षेप में बताता हूँ। और जब हम चलेंगे परिक्रमा में तो आपको हम बताते रहेंगे कि ये जगह ये है जो आपको बताई थी, ये जगह इस तरह है, ऐसे खाली इशारा करेंगे और आगे चलते रहेंगे। तो आगे जाएंगे तो एक गुलाबी रंग का मंदिर आएगा, उसका नाम है ढोका दाऊ जी मंदिर। वो मंदिर बलराम जी का मंदिर है और यहाँ से आगे हम आपको कल ले जाएंगे वहां पर चंद्र सरोवर और प्रविष्ट वन में। तो वहां पर वसंत ऋतु में सबसे पहला जो रासलीला हुआ था वो वहां पर आरंभ हुआ था। एक भगवान की शरद ऋतु की रासलीला होती है वो वहां पर चलती है, बंसी भट्ट में शुरू होती है। और वसंत ऋतु में स्प्रिंग सीजन में भगवान की रासलीला चंद्र सरोवर पे होती है। बहुत सुंदर जगह है वो। तो जब रासलीला आरंभ हुई वहां पर तो इतना आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ कि बलदेव जी जैसे ही गुजर रहे थे यहां से तो अचानक रुक गए और देखे, अरे बहुत सुंदर रासलीला हो रही है। लेकिन वो भगवान के बड़े भाई हैं तो उनको लगा कि अगर मैं प्रकट हो जाऊंगा तो संकोच से मेरे भरे छोटे भाई जो हैं अपनी श्रृंगार लीला बंद कर देंगे। छोटे भाई है ना, मर्यादा है। तो उनको वो रासलीला का आनंद लेना भी था, देखना भी था, दर्शन भी करना था, तो वो उनके दिखाई नहीं पड़े इसलिए वो झुक गए, दंडवत की पोजीशन में आ गए वो। तो दंडवत की पोजीशन को यहाँ पर ढोक कहते हैं, ढोक, ढोक देना मतलब दंडवत करना। तो वो दंडवत की पोजीशन में आ गए और एकदम स्तंभित हो गए, ही गॉट स्टंड। तो उसी पोजीशन में उनकी मूर्ति है, दंडवत पोजीशन में एकदम ऐसे कड़क हो गए, वो स्तंभित हो गए। उस मंदिर का नाम है ढोका दाऊ जी मंदिर। तो बलराम जी भी अपने छोटे भाई की जो ये दिव्य लीला है उसका आनंद लेते हैं। उसके आगे जाएंगे तो अप्सरा कुंड है, नवल कुंड है, इंद्र कुंड है, ऐरावत कुंड है। ऐरावत कुंड में ऐरावत ने आकाश गंगा से पानी लाकर जमा कर दिया। अप्सरा कुंड में अप्सराओं ने अपने अभिषेक के लिए, भगवान के अभिषेक के लिए वहां पर जल इकट्ठा किया। और नवल कुंड एक ऐसी जगह है, अप्सरा कुंड ऐसी जगह है जहां पर भगवान राधा कृष्ण और भगवान और गोपाल बहुत ही अद्भुत लीला करते हैं, प्रेम की लीला। और ऐसे भी कहा गया है कि नवल कुंड में भगवान के 24 अवतार हैं, जो हयग्रीव हैं, बुद्ध है, हाँ, नरसिंह भगवान हैं। 24 अवतारों का वर्णन जो किया गया, दत्तात्रेय उसके अंदर आते हैं, दशावतार आते हैं और भी अवतार आते हैं उसके अंदर। वो सभी भगवान के 24 अवतार जो है वहां पर लीला करते हैं, अनंत लीला करते रहते हैं, अप्सरा वन और अप्सरा कुंड के आसपास। अप्सरा कुंड अप्सरा वन में है, ठीक है। और नवल कुंड ऐसी जगह है, नवल यानी कि नित्य नवायमान, मतलब एवर फ्रेश। नवल कुंड में राधा कृष्ण अति उत्कट लीला करते हैं, और जब उनकी लीला, प्रेम की लीला बहुत ही उत्कट भावना में पहुंच जाती है, तो उस समय वो दोनों पिघल जाते हैं, और दोनों पिघल के उस कुंड में मिल जाते हैं। ये बहुत रहस्य की बात है। आचार्य समझाते हैं कि जब प्रेम की भावना अति उत्कट होती है तो वो द्रवित हो जाती है, द्रवित मतलब इट बिकम्स लिक्विफाइड, और उस द्रवित रूप में प्रिया प्रीतम एक दूसरे से मिल जाते हैं, दे बिकम वन विद इच अदर इन लव। तो नवल कुंड में वो लीला है। ये सब हमारे समझने की मतलब हमारे सब बुद्धि के बाहर की लीलाएं हैं भगवान की। हम हमारी बद्ध अवस्था में और दूषित अवस्था के स्थिति में ये सब लीलाओं का गहन अर्थ समझ नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी सुनना और बोलना जरूरी है हमारी आत्मा की शुद्धि के लिए, इसलिए आपको बता रहे हैं। उसके आगे जाएंगे तो गोवर्धन का एंड आएगा, उत्तरी किनारा आएगा, उसको कहते हैं पूंछरी, यानी कि मोर का पूंछ, पूंछरी लास्ट में आएगा। वहां पर है पूंछरी का लौठा, और वहां पर पूंछरी का लौठा नाम के भगवान के भक्त थे, बड़े सखा थे अच्छे, और वो ग्वाल बाल हैं। जब भगवान को यहाँ से मथुरा जाने का प्रबंध किया गया, अग्रुर जी आ गए कंस के निमंत्रण लेकर धनुर्यज्ञ के लिए, फिर वो जब जा रहे थे तो पूंछरी का लौठा वहां पर बैठे थे, और वो कहते हैं कि आज तो मेरा टर्न है, मेरे घर से प्रसाद आना था, आप जा रहे हो तो कैसे होगा, मेरी सेवा कैसे होगी। तो भगवान कहते हैं कि मैं परसों आऊंगा। तो वो कहते हैं जब तक नहीं आओगे तब तक मैं यहां बैठा रहूंगा। तो बैठे रहे 100 साल तक, भगवान तो आए नहीं लौट के वहां पर, है ना। तो पूंछरी का लौटा जो है वो विरह में है भगवान के, वहां पर विराजमान है, लेकिन बड़े धष्टपुष्ट हैं। अभी विरह में आप देखेंगे तो दुबले होते हैं ना आदमी, धष्टपुष्ट कैसे हैं, जब भगवान के भक्त भगवान के विरह में होते हैं तो भगवान का भाव रूप में संग करते रहते हैं, और उसी से उनका जो दिव्य पोषण है वो चलते रहता है। तो जमुना जी भी भगवान के विरह में है, जमुना जी भगवान की पटरानी है, लेकिन वो उमड़ रही है अनेक तरंगों से, तो वो कसा आपको कुसुम सरोवर में बताएंगे। तो तात्पर्य यह है उसका कि भगवान के विरह में भी भगवान का सबसे उत्कट संग प्राप्त होता है, जो भगवान के साथ में शरीर से रहने पर भी अनुभव नहीं हो सकता है, उसको कहते हैं संयोग, मतलब मिलने का आनंद है उसके अंदर। लेकिन मिलने के आनंद से अधिक उत्कट आनंद है वियोग में, जिसमें भाव रूप में भगवान सूक्ष्म रूप में उनको संग देते हैं। इसलिए पूंछरी का लौटा वहां पर इंतजार कर रहे हैं भगवान के विरह में है, और वो हमको पेशेंस सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? संयम। भगवान ने जब कहा है आऊंगा तो आएंगे, चाहे हजारों साल क्यों ना इंतजार करना पड़े, लेकिन हमको वेट करना चाहिए। तो भगवान का वादा है, आदेश है, उसके लिए सेवक जो है कभी भी डिमांड नहीं करता है। तो वैसे वहां पर एक अच्छा उदाहरण देकर वहां बैठे हैं हमारे लिए, उनका दर्शन करना, उनसे संयम की प्रार्थना करना हमको भी प्राप्त हो जाए। उसके आगे आप चलेंगे तो फिर आएगा बहुत सारे कुंड, कुछ कुछ लुप्त है, इंद्र कुंड वहां पर नहीं नजर आता है। उसके आगे सुरुभि कुंड है, वहां पर हम अगली कथा करेंगे हमारी। तो यहां से हम जाते हुए डोका दाऊ जी, नवल कुंड, अप्सरा कुंड, पूंछरे का लौटा करके हुए सुरुभि कुंड पहुंचेंगे, ठीक है। और सबसे पहले आप अब जब परिक्रमा शुरू कर रहे हैं, बढ़िया से बुग्या आ गए आपके लिए जो चलना चाहते हैं उसके ऊपर, और सबसे पहले आप गिरिराज को अपने एक सेकेंड अपने बाएं मतलब लेफ्ट साइड में रखे आपको दंडवत करना है, आपका सर उस तरफ, गिरिराज को बाएं रखे आप दंडवत करना एकदम फ्लैट बिना संकोच। हाँ माताएं आधा करेंगे, प्रभु जी पूरा दंडवत करेंगे, और गिरिराज से आशीर्वाद लेंगे, प्रार्थना करेंगे, उनका दिल आंखें नेत्र खोलकर दर्शन करना। आप देखेंगे कुछ, देखो कुछ नीले रंग की सिलाएं हैं, कुछ हल्के रंग की सिलाएं हैं ना, वो जो रंग है ना वो कृष्ण का रंग है, एकदम परफेक्ट रंग है वो, घनश्याम है ना। और यहाँ पर सब आपको पर्वत का दर्शन है, आप गिरिराज से प्रार्थना करना, रज से अपना शीश पे लगाना और प्रार्थना करना कि आपकी सेवा करने के लिए हम आए हैं, हम योग्य नहीं हैं, सशक्त भी नहीं हैं, कमजोर हैं आपकी सेवा में, लेकिन आप हमको बल देना और हमारी परिक्रमा जो है आपकी सेवा के रूप में स्वीकार कर लेना। हाँ गोसाई जी कह रहे हैं दक्षिणा की, आप जिसको इच्छा है वो दे सकते हैं। हरे कृष्ण, श्री गिरिराज गोवर्धन की जय हो।